श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 22 श्लोक संख्या 3 दिनांक 4 मई 2015 स्वीकार आदि प्रभु
नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथ नितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमोस्तुते तत्कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी गोपियों का जो प्रेम है तो बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के हृदय में प्रेम जो इतने गंभीर है, तो ब्रज में जब राधा रानी और गोपियों के और कृष्ण के भीतर लीला होती है, वो लीला वहाँ के जो यज्ञमाया है उनके द्वारा संपन्न होती है। इसीलिए गोपियों ने आश्रय लिए किसके, कात्यायनी देवी के। साधारण तो भौतिक संसार के तौर पर दिखा जाती है, जब किसी स्त्री को अच्छे वर प्राप्त करना होती है तो महादेव जी के शिव जी के शरण में जाते हैं और शिव जी ऐसे उनको अच्छे वर देते हैं। लेकिन यहाँ पर गोपियाँ कात्यायनी देवी के पास गए। ये कात्यायनी और कोई नहीं है ब्रज में, वो है यज्ञमाया स्वरूप, यज्ञमाया है जो कि उनके एक ही सेवा है। राधा रानी और श्री कृष्ण की लीला का आयोजन करना, तो ये राधा भाव, ये जो कृष्ण प्रेम में उत्कटता को प्राप्त करने के लिए और कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सारे गोपियाँ कात्यायनी देवी के शरण में जाते हैं और कात्यायनी देवी का पूजा करते हैं। तो श्री कृष्ण ब्रजधाम में जितने सारे लीलाएं होती है, वो सारे लीलाओं में जो श्रेष्ठ है, ऐसे तो राधा रानी श्रेष्ठ है लेकिन लीलाओं के भीतर जो श्रेष्ठ है वो रूपमंजरी है। रूपमंजरी के तत्वावधान में सारे मंजरियाँ युगल मूर्ति का सेवा करते हैं। राधा कृष्ण का जो युगल मूर्ति है, युगल मूर्ति का सेवा तभी प्राप्त होती है जब श्री रूपमंजरी अधिकार देते हैं कोई मंजरी को। मंजरियाँ जितने सारे मंजरियाँ हैं वो मंजरी तभी जाके राधा कृष्ण के सेवा में प्रवेश करते हैं जब रूपमंजरी उनको आदेश देते हैं। ठीक उसी प्रकार रसतत्ववेता श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी पाद जब देखते हैं कोई श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लेख लेकर के आते हैं कि कविता लेकर के आते हैं, तो पहले श्री चैतन्य महाप्रभु जो रस की जो रस तत्व की जो अभिज्ञा है स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनके पास भेजते हैं। जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनका लेख या कविता को अनुमोदन करते हैं तब जाकर के वो कविता चैतन्य महाप्रभु को सुनाया जाता है। तो ब्रज भजन में तभी सिद्धि प्राप्त होती है जब कोई हमें रागात्मिका भगवान श्री कृष्ण के रागात्मिका भजन में जो प्रवेश किए हैं और भगवान के नित्य पार्षद हैं ऐसे रागात्मिका नित्य पार्षद के अनुगत में जब हम होते हैं तब जाके जो ब्रज के जो भजन है वो ब्रज भजन में तभी हमें सिद्धि प्राप्त होती है, सिद्धि मिलती है। इसीलिए दंडका ये जो पंचभौतिक शरीर है और ये देह में ब्रज भजन तब प्राप्त नहीं हो पाएगा जब तक एक रागात्मिका भक्त के आश्रय स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात में आप देखेंगे दंडकारण्य में जितने ऋषि लोग थे वो ब्रज गोपियों को गोपियों के अनुगत में होकर ब्रज भजन किए तभी जाकर के उनको गोपी भाव 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 प्राप्त हुआ। गोपित्व गोपियों का जो भावत्व है वो दंडकारण्य के ऋषि लोगों को तभी प्राप्त हुआ जब वो लोग गोपियों ब्रज गोपियों का अनुगत होकर के भजन किए। और दूसरे तौर पर आप देख सकते हैं वो बात में जब अनुगत विहीन भजन किए, अनुगत विहीन भजन किए कौन, ना वैकुंठेश्वरी जो लक्ष्मी देवी है वो अनुगत विहीन होकर के भजन किए थे, गोपियों के अनुगत होकर के भजन नहीं किए थे। इसलिए वो वृंदावन धाम में रह करके तपस्या करने के बाद भी कृष्ण का संग प्राप्त नहीं कर पाए। वो बात दंडकारण्य के ऋषि लोगों को प्राप्त हो गया क्योंकि वो गोपियों का अनुगत हुए हैं। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी देवी हाँ गोपियों का अनुगत विहीन होकर के तपस्या किए थे ब्रजधाम में। और ऊपर से भगवान श्री कृष्ण जो है वो जाति के क्या है, गोप है। कृष्ण जाति के गोप है, इसलिए गोप जाति के होने के कारण गोपो जाति कृष्ण गोपी प्रेयसी तार देवी या अन्य स्त्री कृष्ण ना करे अंगीकार। गोप जाति कृष्ण गोपी ता प्रेयसी तार गोप जाति कृष्ण गोपी प्रेयसी तार देवी या अन्य स्त्री कृष्ण ना करे अंगीकार। भले वो देवी होना क्यों या अन्य स्त्री होना क्यों, कृष्ण ना करे अंगीकार। यदि गोपी है तो फिर गोप जाति कृष्ण गोप जाति कृष्ण होने के कारण वो गोपियों को स्वीकार करते हैं। हाँ इसीलिए यहाँ पर लक्ष्मी देवी वेंकट भट्ट यही बात पूछते हैं, चैतन्य महाप्रभु को वेंकट भट्ट यही बात पूछते हैं लक्ष्मी देवी के भजन के विषय। तो जब तक हमें ब्रज भजन में सिद्धि प्राप्त नहीं होती है तब तक फिर हमें जो कृष्ण रस गोपी भाव हमें अनुभव नहीं हो पाती है। ये बात एक बार कहे थे उद्धव जी गोप कुमार को कहे थे कि आपको यदि ये वृंदावन रस को प्राप्त करना है तो आप ऐसे कि चिन्मय वैकुंठ धाम को और ऐसे कि ऊर्ध्वद्वार द्वारका को भी त्यागना पड़ेगा। यदि आप ब्रज भजन में जाना चाहते हो या वृंदावन में प्रवेश करना चाहते हो, उद्धव जी गोप कुमार को कहे थे कि आपको वैकुंठ ऐसे कि द्वारका को छोड़ करके ये जगत में जो भौम ब्रज है वहाँ पर आपको वास करना पड़ेगा। और गोप कुमार जब ब्रज में रह करके वो ब्रज के जो परिवेश है परिवेश में रहते हुए जब भजन किए तब जाके कृष्ण उनको प्राप्त हुए। ये बात आज के प्रसंग में गोपियाँ भी कहती हैं क्योंकि दिन के समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में नहीं रहते हैं, चले जाते हैं गाय के साथ मित्रों के साथ बछड़ों के साथ जंगल में चले जाते हैं, लेकिन गोपियाँ नहीं जा पाती है लेकिन गोपियाँ का मन कृष्ण के साथ जाती है। इसलिए गोपियाँ बड़े चिंतित रहती है कि यत ते सो जाता चरण अम्बुरूहम, गोपियां कहती है प्रभु एक कृष्ण आपका चरण कमल इतने सुंदर है, सो जाता आपका चरण कमल इतने सुंदर है, चरण अम्बुरूहम, हमें भी डरते हैं, हमारे छाती में स्तनेषु भीता, यत ते सो जाता चरण अम्बुरूहम स्तनेषु भीता, हमें डरते हैं आपका चरण कमल इतने नाजुक है, इतने कोमल है, ऐसे कोमल चरण कमल को हमें हमारा छाती में धरने के लिए स्तनेषु भीता, भीता मतलब हम भयभीत डरते हैं। प्रिय सने प्रिय दधीमयी, इसलिए हमें खूब आस्ते खूब धीर से, सने धीर से, हे प्रिय कृष्ण दधीमयी, हमारा यहाँ पर आपका चरण कमल को हमें रखते हैं। ओ जागा पर करके शिशु तेन अटवीम अडिशतत व्यतीत कृप आदि भी, गोपियां कहती है जो चरण कमल इतने कोमल है उनको हमें छाती में रखने के लिए डरते हैं। ओ चरण कमल ये कांटे झाड़े जंगल में, जंगल के रास्ता कैसे, गोपियां कहती करके शिशु, बहुत कर्कश होती है, आघात देने वाली होती है, पत्थर कांटे किधर, नदी पहाड़ ऐसे ऐसे की ऐसा रास्ता होती है जंगल के भीतर। करके शिशु तन अटभिम अटसी, आप ऐसे जंगल के रास्ते में आप भ्रमण करते हो, तथे व्यक्ति आपको निश्चित ये जंगल आपको पीड़ा देता होगा। कृप आदि भी, आपका चरण कमल में ये जो क्या है छोटे छोटे पत्थर, वो आपको लग करके आपका चरण कमल को कष्ट देता होगा। कृप आदि भी भ्रमति भी, इसलिए हमें हमेशा चिंतित रहते हैं, हमारा मन हमेशा आपके विषय में सोचती रहती है। क्यों ना भवतो आयुषम ना, क्योंकि हमारा जो जीवन है आपके ऊपर टिका हुआ है। आप तो चले जाते हो आपके मित्रों के साथ गौ के साथ, लेकिन जंगल के रास्ते में आप कैसे आप चलते हो इस विषय में सोच सोच के हमें अथे हो जाते हैं। क्योंकि हमारा क्योंकि गोपियां ऐसे भक्त बने हैं इस संसार के भीतर, बचपन से ही कृष्ण के व्यतीत और कुछ भी नहीं जानते थे। इस संसार के लोग गोपियों का प्रेम को बहुत कुत्सित दृष्टि से देखते हैं, लेकिन गोपियों का साथ जितने सारे लीलाएं हैं बड़े ही कम उम्र में हुआ था भगवान का। जब भगवान चीरहरण किए थे, ये गोपियां जब आगे जाकर के हमें सुनेंगे, गोपियां जब पति रूप में पाने के लिए जब यमुना के तट पर पूजा तपस्या शुरू की, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं वो समय गोपियां का उम्र थी 3 साल के। उस उम्र में एक बच्चे को पुरुष और स्त्री का अंतर वो नहीं देखता, ये पुरुष है वो स्त्री है वो वो वो, वो ये ज्ञान उनको नहीं रहता है। उस उम्र में ये जो गोपियां हैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा की थी, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उनको अपने पद स्वीकार किए पत्नी के रूप में। तो प्रभुपाद जी आज के प्रसंग में श्रील सुखदेव गोस्वामी ये बताते हैं, जब तक कृष्ण भावना अमृत में हमारा निष्ठा नहीं होती है, आप लोग ये बात में सुनेंगे, आप कई बार कभी सुने होंगे, प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, एक बार उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर जी घर में आम रखे थे और कृष्ण को अर्पित नहीं हुआ था, खा लिए थे एक आम उठा के। तब भक्ति विनोद ठाकुर जी बड़े कोमल स्वभाव से पूछे कि बेटा कृष्ण को अर्पित नहीं हुआ है, आपने खा लिया। अब उसी समय भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज अपने को ऐसे दोषी समझे, उसी समय प्रतिज्ञा, उस समय भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज का उम्र क्या थी, 3 साल। जिस प्रकार यहाँ पर गोपियों का उम्र 3 साल उम्र में, वो कृष्ण को पाने के लिए कितने 3 साल की उम्र में, कृष्ण को पाने के लिए कितने उत्कट इच्छा है, ठीक उसी प्रकार ये तभी संभव होती है। ये जो कृष्ण के पार्षद होते हैं, कृष्ण के पार्षदों के बचपन से ही जन्म से ही ये कृष्ण जो राग है उनके लोम लोम में निखरती है, उनके खून खून में कृष्ण आसक्ति वो रहती है। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज को जो 3 साल की उम्र थे उम्र हुआ था तो उस समय वो आम खाने की जो त्याग कर दिए, इच्छा है उनको छोड़ दिए थे। जब उनके शिष्य लोग उनको आम भेंट करते थे तो वो यही कहते थे, मैं आम नहीं खा सकता क्योंकि मैं अपराधी हूँ, इस प्रकार का भक्ति। और ये बात को कृष्ण श्रील प्रभुपाद जी ने बताते हैं, यदि कोई व्यक्ति को कृष्ण भावना अमृत को समझना है, टिकना है, उनको तीन सिद्धांतों को जानना चाहिए। वो तीन सिद्धांत क्या है ना, ये जानना है कि कृष्ण परम भोक्ता है, दूसरा कृष्ण परम नियंत्रक है, तीसरा कृष्ण परम सुहृद है। ये तीन सिद्धांत को जब ये व्यक्ति जानता है तो फिर वो कृष्ण भावना अमृत में बड़े निष्ठावान बनता है। और जब तक एक भक्त कृष्ण भावना अमृत में स्थिर नहीं होता तो फिर ये संसार की थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों में बह जाएगा। जैसे एक व्यक्ति उसको राजा बना दिया जाए, सिंहासन में बैठा दिया जाए, उनके सामने एक बहुत बड़ा सुंदर टेबल है और रकम रकम प्रकार प्रकार की फल की जूस उनके टेबल में रखा जाए और बहुत स्वादिष्ट पदार्थ भोज्य पदार्थ उनके सामने रखा जाए और उनके सामने सुंदर सुंदर स्त्रियां नृत्य करते हैं कर रहे होंगे और सुंदर वाद्य बजते होंगे और संगीत भी चलती होगी। हाँ, इस प्रकार एक सुखमय परिस्थिति में अवस्था में वो व्यक्ति कुछ भोज्य पदार्थ को जब अपने मुंह में लेने के लिए इच्छा करता है तो ऊपर देखता है उनके सर के ऊपर एक तीखी धार वाली तलवार एक पतला धागा में बंधे होकर के उनके सर के ऊपर लटका हुआ है। तो उस अवस्था में भले सारे सुख की सामग्री उनके सामने ही प्रस्तुत है, क्या वो वस्तु से वो सुख प्राप्त कर पाएगा? तो वो तो वो विषय में सोच करके चिंतित रहेगा, कब ये तलवार वो धागा से टूट करके मेरे सर में गिरेगा और मेरा सर कट जाएगा, इस बात के ऊपर उनका चिंता रहेगा। ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति को सारा संसार के सुख उनके दे दिया जाए, जब तक ये व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त नहीं करता, ये बात बार बार प्रहलाद महाराज बताते हैं अपने जो चिल्ड्रेन प्रोग्राम से, वो प्रोग्राम वो जो बच्चों का क्लास ले रहे थे प्रहलाद महाराज यही बात के ऊपर ध्यान दिए। इसीलिए वो जो उनके क्लास में जो बच्चे लोग थे वो अपने तथाकथित संड और अमर के शिक्षा को त्याग दिए, क्योंकि कृष्ण भावना में इतने स्वाद इतने हाई क्लास इतने उच्ची लेवल के उच्ची ज्ञान है, वो ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है फिर ये संसार के सारे ज्ञान सारे वस्तु सारे सुख उनके सामने असार हो जाती है। तो कृष्ण भावनामृत का एक उदाहरण है, जगन्नाथ जी के एक भक्त हैं, किस प्रकार ये कृष्ण भावनामृत को अपना करके अति बहुत बहुत बड़े बड़े खतरे को उनको ऐसे ऐसे वो मिटा दिए कि सामना किए। वो भक्त थे वे, वो छोटे ऐसे ऐसे साधारण सब व्यक्ति थे, लेकिन थे जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त। उनका काम था कपड़े की काम है, तो कपड़े में वो नाना प्रकार की रकम रकम कारीगरी दिखाते थे। तो उस समय दिल्ली के बादशाह थे, मुगल सम्राट शासन करते थे, तो मुगल सम्राट को पता चला ये व्यक्ति का कारीगरी बहुत ही लोभनीय है आकर्षणीय है, तो उन्होंने उनको बुलाए और दो कपड़े दिए, बहुत सोने हीरे चांदी ये सब दिए। तो देख करके बोले ये जो दो कपड़े हैं उनको बहुत अच्छे तरह से बना करके कारीगरी काम करके मेरे पास लेके आओ। तो भक्त ने लेके गए अपने घर में पहुंचे। अब पहुंच करके जब वो कपड़े को लेकर के वो अपने कला में काम कर रहे थे, ठीक उस समय उनके मन में ये विचार आया, ये जो वस्त्र है इतने सुंदर है, ये वस्त्र कोई साधारण व्यक्ति के लिए योग्य नहीं है, ये भगवान के लिए योग्य है, ये भगवान को दिया जानी चाहिए। ये विषय जब वो सोच रहे थे ठीक उसी समय जगन्नाथपुरी में श्री गुंडीचा रथ यात्रा हो रही थी और भगवान जगन्नाथ जी को अपने जो रत्न सिंहासन है वहाँ से उनके सेवक लोग निकाल करके लेके आ रहे थे जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर। जब जगन्नाथ जी का रथ जगन्नाथ जी को बाहर लेके आते हैं तो जगन्नाथ जी को जागे जागे बैठा दें जैसे हमारे मंदिर में करते हैं। हाँ, क्योंकि जगन्नाथ जी इतने हैवी होते हैं तो इतने मोटे तागड़े उनके सेवक भी उनको उठा नहीं पाते। जगन्नाथ जी जैसे पहलवान है और उनके भक्त लोग भी इस प्रकार का पहलवान है तो इतने बलिष्ठ इतने ताकत वाले भक्त लोग उठा करके भी वो जगन्नाथ जी का वजन को सहन नहीं कर पाते हैं। जगन्नाथ जी भी ऐसे जानबूझ करके अपने वजन को उस समय बढ़ा भी देते हैं क्योंकि जगन्नाथ जी इतने आसानी से रथ के ऊपर नहीं आते हैं, वो बड़े ही एकदम झुम झुम के आते हैं। बलदेव सुभद्रा आसानी से आ जाते हैं लेकिन जगन्नाथ जी इतने आसानी से नहीं आते हैं क्योंकि उनके भक्तों के बीच में जब होते हैं उनको अलग रस प्राप्त होती है मिल जाती है इसलिए वो धीमी धीमी गति में आते हैं। तो उनके भक्त लोग जब लेके आ रहे थे मंदिर से बाहर रथ के ऊपर तो एक जो कपड़े पहने हुए रहते हैं जगन्नाथ जी और एक गद्दा होता है वो गद्दा में बिठा बिठा के लेके आते हैं तो उठा करके जब जगन्नाथ जी के सेवक लोग वहाँ पर बिठा दिए तो उस समय वो पहने हुए कपड़े फट गए। जब फट गए वो वहाँ पर वो भक्त जो कपड़ा का काम कर रहा था वो उस समय वो आंख बंद किया था और गुंडीचा रथ यात्रा को दर्शन कर रहा था। जब गुंडीचा रथ यात्रा दर्शन कर रहा था भगवान जगन्नाथ जी का पांडी विजय हो रही थी तो पांडी विजय के समय जगन्नाथ जी का पहने हुए वस्त्र फट गया। जब फट गया तुरंत वो भक्त वो जो सुंदर वस्त्र का काम कर रहा था वो उठा दिया जगन्नाथ जी के ओर। जैसे जगन्नाथ जी की ओर उठा दिया वो भक्त सुनिए सुनिए वो वस्त्र जाकर जगन्नाथ जी के शरीर में लग गया और वो भक्त देख रहे हैं कि जगन्नाथ जी उनके दिया हुआ वस्त्र को स्वीकार कर लिए। तो जगन्नाथ जी तो उनके वस्त्र को स्वीकार कर लिए तो थोड़े दिन के बाद जो दिल्ली का बादशाह था तो वो अपने आदमियों को भेजा जाओ वो उसको मैं कपड़े दिया था तो क्या काम किया लेकर के आओ। तो बादशाह का आदमी आए आकर के बोले कि अभी सम्राट का बादशाह का आदेश है ये कपड़े लेकर के चलो। तो वो व्यक्ति जो दो कपड़ा बादशाह ने दिया था वो एक लेकर के गया। जब वो बादशाह के सामने पहुंचा तो बादशाह उनके हाथ में एक ही कपड़ा देख करके क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर पूछे अरे मैं तुम्हें दो दो कपड़ा दिया था एक लेकर के आए दूसरा किधर गया। ना दूसरा तो जगन्नाथ जी ले गए जय भक्त ने कहा। जैसे कहा तो बादशाह तुरंत और क्रोध में आ गए। हाँ क्रोध में तो आ गए और थोड़ा सा हंसे भी। हाँ तो हंस करके पूछे सच बता दूसरे कपड़ा किधर गया। तो भक्त ने कहा सच में बता रहा हूँ कि जगन्नाथ जी ले गए। तो बादशाह को और क्रोध आया तो तुरंत अपने लोगों को बोला उसको उसका हाथ पैर बांध करके उनको जेल में डाल दो। तो उनके लोग ले गए और उनका हाथ पैर को बांध करके जेल में फेंक दिए। तो जेल में जंजीर में बंधे अवस्था में तो वो भक्त ने जगन्नाथ जी को स्मरण किया ये क्या हो गया आपकी जैसे साहस सपोर्ट होते होते मेरा ये हालत है तो फिर आप कैसे हैं। तो जगन्नाथ जी अपने मंदिर में रह के जान लिए मेरे भक्तों को इस प्रकार का दुख दिया जा रहा है। तो अपने मंदिर से निकले और इस प्रकार वो भक्त प्रार्थना करते करते वो जेल में सो गए। तो यहाँ से जगन्नाथ जी अपने मंदिर से निकले वहाँ पर पहुँच करके केवल दृष्टिपात किए वो भक्त के सारा शरीर में जो जंजीर में बंधा गया था वो जंजीर सब निकल गया। हाँ और उनका वो बड़े आराम से और सो गए। जब जगन्नाथ जी जब देखें उनके भक्त आराम से सो गए तो दिल्ली बादशाह के घर में गए और दिल्ली बादशाह अपने पलंग में बड़े आराम से सोया हुआ है और जाकर के जगन्नाथ जी बादशाह को बोले अरे हाँ मैं तुझे राजा बनाया और ये जगत की जो भी वस्तु है वो सब मेरा है। हाँ तेरा बाप का क्या दे दिया मेरा भक्त वो दिया तो मेरा ही संपत्ति दिया ना। हाँ तेरा बाप का क्या ऐसा दे दिया कि मेरे भक्त को इतने कष्ट में डाल करके जेल में फेंक दिया। और यदि आप सुबह होते होते मेरे भक्त को वो जेल से नहीं निकालोगे हाँ तो मैं तेरा सारा वंश को एक एक करके मार दूंगा। ऐसे जगन्नाथ जी बोल करके हाथ में एक डंडे लिए खूब जोर पीटे पठान को वो बादशाह को बहुत जोर से पीटे। जो पीटे उनके शरीर में एक बहुत बड़ा स्पॉट हो गया मतलब पीटे जब डंडा में पिटा ही होता है ना तो शरीर में एक लाइन हो जाती है। हाँ जगन्नाथ जी जो पीटे आप जगन्नाथपुरी जाओगे जगन्नाथ जी के सेवक लोग भी पीटते हैं कहते हैं ये पिटाई खाना जगन्नाथ जी का आशीर्वाद है, इतना बड़े बैत लेते हैं, बैत में वो पीटते हैं जो पार होते हैं जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ जी के दर्शन के पार होते हैं तो पीटते हैं। तो जगन्नाथ जी भी ऐसे वो दिल्ली बादशाह को पीटा, हाँ तो पीटा जब वो एकदम नींद में सोया था, ऐसे ऐसे होकर उठा, उठ करके देखा अरे उनके शरीर में इतना बड़ा है कि लाल लाल हो गया है, और स्वप्न में जगन्नाथ जी इस प्रकार का बोल के गए, हाँ वो दौड़ दौड़ के गया, जब जेल में गया देखा कि सच में वो जिसको इतने लोहे के जंजीर के द्वारा बंधा के फेंक दिया गया था जेल में, वो उसका सारा शरीर से जंजीर निकल गया है, वो आराम से बैठ करके भजन कर रहा है। तो बादशाह सोचने लगा ये कोई सामान्य नहीं है, उसको दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। हाँ तो जेल के भीतर गए, उनके चरण में माफ़ी मांगे और उनको हाथी में बिठा करके सारे दिल्ली शहर के भीतर घुमाए और बहुत सारे धन दे करके उनके घर में छोड़ के आए। तो कहने का अर्थ है जब हमें कृष्ण भावनामृत में हो जाते हैं कि कृष्ण भावनामृत हमें प्राप्त हो जाता है, तो फिर ये इस संसार की कोई प्रकार के डर हमें दुखी नहीं कर पाता है। तो इसी प्रकार डर से मुक्त करने के लिए हर समय जगन्नाथ जी के भक्त लोग भी, भगवान श्री कृष्ण के भक्त लोग भी ये संसार में प्रकट होते हैं। आप जानते हैं आज हमारे ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय के महान आचार्य की रसिक शेखर थे, कृष्ण प्रेम उनके हृदय में इतने भर भर के थी, उनका दर्शन करने मात्र से ही कोई व्यक्ति कृष्ण भक्त बन जाएगा। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त के दर्शन मात्र से ही कृष्ण भक्ति संचार हो जाती है, ये कृष्ण भक्ति का लक्षण है। केवल शुद्ध भक्त का दर्शन मात्र से ही वो कृष्ण भक्ति संचार होती है। हाँ ये भक्ति का, कृष्ण भक्ति का एक बहुत गोपनीय चीज है, वही चीज है। तो उसी वही संप्रदाय में उसी प्रकार के भक्त प्रकट हुए थे, माधवेंद्र पुरीपाल जी, उनके भक्ति के जीवन में तो उनके अनेक अनेक संन्यास शिष्य थे, लेकिन ये संन्यासी शिष्यों में से दो प्रमुख थे माधवेंद्र पुरीपाल जी के, जो दो प्रिय शिष्य थे, एक थे ईश्वर पुरीपाल, दूसरे थे परमानंद पुरीपाल। अब जानते हैं ईश्वर पुरीपाद कितने महान शिष्य थे माधवेंद्र पुरीपाद जी के। जब एक शुद्ध भक्त अंत समय में अशक्त हो जाता है तो उनके शिष्य लोगों को उनका सेवा करने की सौभाग्य प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार माधवेंद्र पुरीपाद जी को अंत समय में इसी प्रकार का दशा हुआ था। वो अंत समय में अशक्त हो गए थे और बिस्तर में उनको मल मूत्र त्याग करना हो रहा था, और उस अवस्था में उस समय उनके जो शिष्य थे ईश्वर पुरीपाद अपने गुरु के वो मल मूत्र को साफ करते थे, और उनके ये सेवा भाव को देख करके ईश्वरी माधवेंद्र पुरीपाद जी इतने प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद देख करके कहें हे बालक मैं तुम्हारे ऊपर इतने प्रसन्न हूँ, निश्चित रूप से आपके ऊपर कृष्ण की कृपा होगा। और अपने गुरु के कृपा प्राप्त करके ईश्वर पुरीपाद जी इतने महान भक्त बने, स्वयं भगवान उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किए। जब वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए संसार में तो ईश्वर पुरीपाद जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किए। हाँ देखिए ये गुरु की इतने बड़ी महान कृपा की फल है। जब कोई शिष्य अपने गुरु की कृपा को प्राप्त कर लेता है तो इस प्रकार के उनको एक सौभाग्य मिलती है। दूसरे उनके एक शिष्य थे परमानंद पुरीपाद जी। ये परमानंद पुरीपाद जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए उस समय परमानंद पुरीपाद जी उनको दंड प्रदान किए थे परमानंद पुरीपाद। और परमानंद पुरीपाद जी को जो पहली बार चैतन्य महाप्रभु दर्शन किए तो चैतन्य महाप्रभु ये बात को कहे थे, मेरा आज कर्ण मन जीवन आज मेरा सब कुछ धन्य हो गया, क्योंकि आज मैं मेरा सामने माधवेंद्र पुरीपाद जी का प्रकाश को मैं देख रहा हूँ। जिस प्रकार का पिता का प्रकाश पुत्र होता है, ठीक उसी प्रकार गुरु का प्रकाश उसके शिष्य होते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो पहली बार परमानंद पुरीपाद जी को दर्शन किए ये कहे थे, मेरा जीवन आज धन्य हो गया क्योंकि मेरा सामने आज माधवेंद्र पुरीपाद जी के प्रकाश को देख रहा हूँ। और यही परमानंद पुरीपाद जी जब जगन्नाथ क्षेत्र में वास करते कर रहे थे जगन्नाथ जी के मंदिर के पश्चिम दिशा पर, तो अपने एक कुटिया बना करके वहाँ पर भजन कर रहे थे, तो अपने कुटिया के सामने एक कुआं खोद रखे थे और ये कुआं के भीतर खारा जल था, इतने व्यवहार योग्य नहीं हो पा रहा था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब देखें परमानंदपुरी पाद जी के कुआं में खारा पानी है, तो तुरंत जो जगन्नाथ जी को प्रार्थना की है, आप गंगा जी को ला करके यहाँ पर बास कराइए। और चैतन्य महाप्रभु के प्रार्थना से प्रार्थना को जगन्नाथ जी सुन ली और जगन्नाथ जी गंगा को ला करके परमानंदपुरी पाद जी के कुआं में स्थापन किए थे। जब वह गंगा को ला करके स्थापन किए तो चैतन्य महाप्रभु घोषणा किए थे, आज से परमानंदपुरी पाद जी का जो ये कुआं है ये गंगा है, जो कोई व्यक्ति आकर के परमानंदपुरी पाद जी का गंगा जल को स्पर्श करेगा कि स्नान करेगा, उनको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। और आप जानते हैं ये लीला बहुत हर बार सुने हैं कि किस प्रकार बालेश्वर के रेमोणा के खीरसूर गोपीनाथ, वृंदावन के गोपाल, कितने घनिष्ठ, कितने अंतरंग लीला हुआ माधवेंद्रपुरी पाद जी के साथ। गोपाल के विग्रह वृंदावन के मुगल सम्राट लोग उस समय वृंदावन मंदिर को तोड़ रहे थे और गोपाल विग्रह को कांटे में छुपा दिए थे उनके पुजारी लोग मुगल लोगों के आक्रमण भय से। और वो गोपाल विग्रह मिट्टी के नीचे पड़ा था कितने समय से, कांटे के ऊपर, कांटे के नीचे पड़े थे। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो ब्रज रस का जो पुरोधा नेता है, उनको आकर के क्या भीख मांग रहे, आप आओ मुझे निकालो वहां से, मैं बहुत कष्ट में हूं, वहां पर भूखा हूं मैं, ये गर्मी में मेरा सारा शरीर एकदम जल रही है, आप वहां से मुझे निकालो। और माधवेंद्रपुरी पाद जी जानते हो कांटे जंगल में वो पत्थर से गोपाल जी को निकाल करे कितनी बड़ी सभा करते हैं। और जब खीरसूर गोपीनाथ रेमोणा में उड़ीसा में पहुंचते हैं गोपीनाथ जी के साथ, उनको कितने बड़ी अंतरंग लीला हुई वहां पर, ये तो आप सब जानते हैं। और आज के दिन में और एक महान आचार्य प्रकट हुए थे, श्रीनिवास आचार्य। चैतन्य महाप्रभु के कृपा विग्रह है, कृपा शक्ति का प्रकाश है श्रीनिवास आचार्य। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ धाम में संन्यास लेकर के वास कर रहे थे, ये जो श्रीनिवास आचार्य के जो पिता माता है महान वैष्णव थे, चैतन्य महाप्रभु के विरह में जब दर्शन करने के लिए गए थे जगन्नाथपुरी, उस समय चैतन्य महाप्रभु समझ गए ये जो दंपत्ति है जगन्नाथपुरी आए हैं जगन्नाथ जी के चरण में कुछ इच्छा रख करके, तो मैं उनको आशीर्वाद करता हूँ। उन ये लोगों के, ये दोनों के गर्भ से ऐसे एक वैष्णव उत्पन्न जन्म ले जो आगे जा करके सारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय का जो जितने सारे ग्रंथ है वो ग्रंथ का प्रचार करने के लिए वो भाग ले। अब यही हुआ चैतन्य महाप्रभु कृपा से, ये दोनों के गर्भ से जो गर्भ में सब जब श्रीनिवास आचार्य प्रकट होते हैं, महा बहुत लीला है बड़ी, तो ये जो जीव गोस्वामी पाद जी के ये तत्ववेधान रक्षण व्याख्यान में तत्ववेधान में थे श्रीनिवास आचार्य। जब जीव गोस्वामी पाद जी वृंदावन में रहे थे तो उनको मिलने के लिए जब उनके साथ भेंट हुआ, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु, दुखी कृष्णदास, ये तीनों महान वैष्णव जब जीव गोस्वामी पाद जी को मिले थे, ठीक उस समय ब्रज के जितने महान संत है और श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के रूप गोस्वामी और बहुत सारे जो हमारे आचार्य वृंद है उनके आदेश से ये तीन महान आचार्य तो हमारे आचार्य के ग्रंथों को वितरण करने के लिए जीव गोस्वामी पाद जी से आदेश लिए थे। और जीव गोस्वामी पाद जी तीनों को आदेश दिए, जाओ ये सारे आचार्य ग्रंथ को वितरण करो। और वो तीनों निकले और एक बैलगाड़ी में रूप गोस्वामी पाद जी और जितने सारे आचार्य के ग्रंथ को बैलगाड़ी में लेकर के जब बनविष्णु विष्णुपुर में पहुंचे, वहाँ के एक राजा थे, राजा तो थे लेकिन बहुत खंट थे, तो वहाँ पर जो पहुंचे ये तीनों महान वैष्णव, तो उनको पता चला, राजा हम्बीर, ये हम्बीर को पता चला ये लोग एक बैलगाड़ी में बहुत अमूल्य धन लेकर के आए हैं, तो उनको जब पता चला तो सोते समय, ये वैष्णव लोग सोते समय वो अपने आदमियों को लगा करके बैलगाड़ी से सारे ग्रंथ को चुरा ले गए। वो ग्रंथ को सिंदूक में रखे थे, वो सिंदूक को उठा करके लेके भाग गए। और वो राजा हम्बीर ये ग्रंथ का सिंदूक को लेकर के अपने घर पे अपने घर में चला गया। तो वहाँ पर जब खोल करके ताला को तोड़ करके वो सिंदूक खोल करके देखते हैं, अरे ये तो सब रूप गोस्वामी पाद जी के सारे ग्रंथ हैं। और राजा हम भी जैसे ही रूप गोस्वामी पाद जी के ग्रंथ को स्पर्श करते हैं, उनके हृदय में जितने सारे अनर्थ है, जितने सारे पाप है, तत्क्षण दूर हो गया और उनके हृदय शुद्ध हो गया। जैसे रूप गोस्वामी पाद जी के ग्रंथ को स्पर्श किए वो शुद्ध हो गया, उनका सारे पाप नष्ट हो गया। हाँ, तो फिर वो पश्चाताप किए, मैंने क्या कर दिया, ऐसे ऐसे भक्तों के चरण में अपराध कर दिया, ऐसे सोच सोच के सो गए। फिर चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में आते हैं, हाँ आपके पास जो आएगा मेरे एक भक्त उनके चरण में आश्रित होकर के ये ग्रंथ को उनको वापस कर दो। तो फिर जब सुबह होते हैं, होती है, ये तीन महान भक्त जब नींद से उठते हैं, देखते हैं अरे गाड़ी से उनके सारे ग्रंथ कोई चुरा लिया है, बड़े दुखी होते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, तो वहाँ पर श्रीनिवास आचार्य ये दुखी कृष्णदास और श्यामानंद प्रभु को वृंदावन भेज देते हैं और वो ग्रंथ ये ग्रंथ को वहाँ पर आसपास में खोजने ढूंढने लगते हैं। तो वही अगल बगल में एक गांव में एक भक्तों के सहायता से, अब फिर वो गांव के लोग बोल दिए श्रीनिवास आचार्य को कि आपका ये जो ग्रंथ है ये राजा हम्बीर ने चुराया और राजा है, और ये भक्त क्या कर पाएंगे उनको। तो ये भक्त क्या किए, वो गांव के एक भक्त थे, उनकी सहायता से वो राजा हम्बीर के राजभवन में पहुंचे और राजा हम्बीर के राजभवन में पहुंच करके जो भागवत के श्लोक है इतने भक्ति रसात्मक ढंग से उनको उच्चारण कर रहे थे और उनको इतने भक्ति में हो करके वो उनको व्याख्या कर रहे थे, वो राजा हम्बीर जैसे ही सुने तो तुरंत श्रीनिवास आचार्य के चरण में गिर पड़े और अपने गलती के लिए उनको माफी मांगे और सारे ग्रंथ को उनको वापस कर दिया। जब राजा हम्बीर ने सारे ग्रंथ को वापस कर दिए तो फिर उन्होंने वृंदावन में जीव गोस्वामी पाद जी को खबर दिए मुझे ग्रंथ प्राप्त हो गया है, और फिर दुखी कृष्णदास और श्यामानंद प्रभु वहाँ पर आते हैं, फिर वो ग्रंथ को फिर उड़ीसा गौड़ देश में और बाकी जगह में उसको प्रचार करते हैं। तो इसी प्रकार ये श्रीनिवास आचार्य के तो और लंबी जीवन है, बहुत उनकी गाथा है। फिर तीसरा आज और क्या है कि परमानंद क्या तीसरा एक आचार्य सारंग था परमेश्वर दास ठाकुर, ये भी चैतन्य महाप्रभु के एक कट्टर नसरी नित्यानंद प्रभु के कट्टर भक्त थे। ऐसे वृंदावन दास ठाकुर और अन्य आचार्य ने बताते हैं जो कोई नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को प्राप्त करना चाहता है तो उनको परमानंद दास ठाकुर का स्मरण करना चाहिए। केवल परमानंद दास ठाकुर के स्मरण मात्र से उनको नित्यानंद तत्व उनके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। ये परमानंद दास ठाकुर का एक महान जीवन की चरित्र है। तो इसी प्रकार आज के दिन में अनेक अनेक आचार्य लोग प्रकट होकर के ब्रज रस को हमारे हृदय में संचार करने के लिए हमें एक मौका दिए हैं। तो ये अवसर का लाभ लेकर के ऐसे आचार्यों के चरण में हमें यदि प्रार्थना करें, उनके चरण में हाथ जोड़ें, तो निश्चित रूप से एक बूंद यदि हमें प्राप्त हो जाए, कृष्ण प्रेम का हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, तो निश्चित रूप से हमें कृष्ण को पाने के लिए आशा कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की नित गौर प्रेमानंदे।